नूर वाली नूर वाली नूर वाली किताब कुरान मेरा नूर वाली किताब कुरान मेरा नूर वाली किताब
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ،
الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ،
وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ،
وعلی
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله،
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله،
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله،
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔
اس سے پہلے کہ ہم اپنے سیگمنٹس کی جانب بڑھیں، چونکہ ہمارا پروگرام کچھ سیگمنٹس پر مشتمل ہوتا ہے، ہم یہاں پہ سنتے ہیں درود پاک کی ایک فضیلت۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میرا نام کتاب میں لکھے گا تو جب تک میرا نام اس کتاب میں لکھا رہے گا فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔
سبحان اللہ،
ایک مرتبہ پڑھ لیجئے، صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ جی ہاں بچوں، کسی بھی کتاب میں یا کسی کاپی میں آپ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھیں نا، تو آگے مکمل درود پاک بھی لکھنا چاہیے اور پھر اس کا ادب بھی کرنا چاہیے، کی رسپیکٹ بھی کرنی ہے۔ تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ جب تک وہ نام اس بک میں لکھا رہے گا لکھا رہے گا لکھا رہے گا، آپ کے لیے کون مغفرت کی دعا کر رہا ہے؟ فرشتے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ کتنی پیاری فضیلت ہے، اللہ پاک اس فضیلت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بچوں، ہم بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کے جانب اور اس کا نام ہے تجوید کلاس۔ جی ہاں بچوں، پہلا سیگمنٹ تجوید کلاس میں ہم موجود ہیں اور ہمارے ساتھ حمزہ بھائی بھی موجود ہیں۔ سورہ غوشیہ کی آج تلاوت ہونے والی ہے، لیکن پوری سورہ غوشیہ نہیں بلکہ سورہ غوشیہ کی جو آخری کی چند آیات ہیں وہ انشاءاللہ آج ہم سنیں گے۔ حمزہ بھائی کو دیکھتے ہیں کہ آج ہمیں کن آیتوں کی تلاوت سناتے ہیں۔ جی حمزہ بھائی،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إن لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن صدق اللہ العظیم۔
سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، ابھی آپ نے سورہ غوشیہ کی آخری کی چند آیات کی تلاوت سنی ہے، اور یہ دیکھیے آپ کے سامنے بورڈ پر یہ جو آیات جن کی تلاوت ابھی آپ نے سنی ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے ये जो आयात हैं इनमें क्या सीखना है उसका मैं आपको बताता हूँ। आज हमने सीखना है हरकात के बारे में। किसके बारे में सीखना है? हरकात के बारे में। तो देखते हैं कि आपको हरकात की कितनी पहचान है और हरकात के बारे में कितनी ज़्यादा मालूम है। किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आप भी अपनी तवज्जो बरकरार रखिए और पूरा का पूरा फोकस कर दें ये बात सीखने के लिए, क्योंकि ये आज की बात बहुत अहम बात होने वाली है। और आज जो हम बात सीखने वाले हैं, कुछ बच्चे उनमें बहुत ज़्यादा गलतियां कर देते हैं। तो चूंकि बच्चों का प्रोग्राम है इसलिए हम कह रहे हैं कि बच्चे गलतियां कर देते हैं, वरना गलतियां तो कभी बड़े भी कर देते हैं। ये देखें, सबसे पहले ये बात समझना ज़रूरी है कि हरकात क्या होती है। आप में से कोई बताएगा कि हरकात किसे कहते हैं? हरकात किसे कहते हैं आप बताइए?
ज़बर ज़ेर पेश को हरकात कहते हैं।
ज़बर ज़ेर पेश को
हरकात कहते हैं।
हरकात कहते हैं। ये है ज़बर, नज़र आ रहा है? ज़बर हमेशा ऊपर होता है। और ये है ज़ेर, नज़र आ रहा है? ज़ेर हमेशा कहाँ होगा? हर्फ के
नीचे।
अब आगे बढ़ते हैं, पेश कहाँ है भाई? पेश कहाँ है? हौ के ऊपर। ये आ गया पेश। तो पेश भी हमेशा कहाँ पर होता है? लेकिन पेश थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है, इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ होता है। ये देखें, ये पेश की अलामत है। ये हो गया ज़बर, ये हो गया ज़ेर, और ये हो गया पेश। अब गिनना शुरू करें कि इनमें कितनी हरकत है। गिनें, चलें, एक दो नहीं तीन नहीं, ये तो मद्दा है, चार पाँच और छः सात आठ नौ दस ग्यारह। अब ये लीन है, इसको छोड़ देंगे। बारह, यहाँ तक बारह हो गई थी, तेरह हो गई थी, बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह। अल्लाह अकबर, एक आयत के अंदर इतनी सारी हरकत। और अगर हमें हरकत के ही बारे में नहीं पता होगा तो क्या हम कुरान पाक को सही पढ़ सकेंगे? गलती कर देंगे ना। तो सबसे पहले आपने हरकत को पहचान लिया कि हरकत क्या है। ये है ज़बर, ये है
ज़ेर,
और ये तो ज़बर ज़ेर पेश को क्या कहते हैं? हरकत कहते हैं। अच्छा, एक होगा ना, एक जैसे एक ज़बर है उसको कहते हैं हरकत, और अगर एक ज़ेर है तो इसको भी क्या कहेंगे?
हरकत।
और अगर एक पेश है तो इसको क्या कहेंगे?
हरकत।
हरकत, जैसे अगर यहाँ पे कोई एक बच्चा खड़ा हुआ हो तो उसको क्या कहेंगे? बच्चा, है ना। और अगर यहाँ पे बहुत सारे बच्चे खड़े हुए हों तो अब बच्चा कहेंगे या बच्चे कहेंगे?
बच्चे,
जमा हो जाएगी। तो इसी तरह जब एक हो तो वो हरकत, और अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर वो हरकत, ये जमा है, ठीक है। प्यारे बच्चों, कुरान पाक में जहाँ पर भी हरकत होती है तो इसका मतलब ये होता है कि आपने वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं खींचना। पाबंदी लग गई आप पर। किस चीज़ की पाबंदी लग गई? खींचने की या ना खींचने की? खींचने की, ना खींचने की, यानी खींचना है फिर नहीं खींचना। हाँ, आप पर पाबंदी इस चीज़ की लगी है कि आपने नहीं खींचना या खींचना है? नहीं खींचना। नहीं, देखें, पाबंदी लगती है उल्टी चीज़ की, यानी उल्टी चीज़ से मुराद है जिस चीज़ से आपको मना किया जा रहा है। तो पाबंदी ये लगी है कि आपने खींचना बिल्कुल भी बगैर खींचे पढ़ना है, नंबर वन। इसीलिए कारी साहब ने इसको पढ़ा अफा, मैंने खींचा। हाँ, यहाँ पे हरकत नहीं है, ये मद्दा है। मैंने आपको पहले प्रोग्राम में समझाया था ना, ये है अलिफ मद्दा। तो यह खींचेंगे अफा ला ला ला, अब ये मैं खींच रहा हूँ क्योंकि अब यहाँ हरकत नहीं है, यहाँ मद्दा है। लेकिन जब सिंपल हरकत होगी तो फिर इसको बिल्कुल भी नहीं खींचना है, इसीलिए इसको पढ़ा आ, ये हो गया फा। अच्छा, ये ई है या ई है? ई खींचना। अच्छा, ये बिली है या बीली है?
बिली,
बी और फिर
ली,
बा ज़ेर बी, लाम ज़ेर
ली,
ठीक है। ये आप समझ गए, ये बहुत है आसान, सीखना आसान है, समझना आसान है, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस करना ये मुश्किल है, क्योंकि हरकत की प्रैक्टिस करने के लिए आपको बार बार पढ़ना होगा, बार बार, क्योंकि हरकत के साथ आपको उर्फ़ मद्दा भी नज़र आएगा। हरकत के साथ आपको खड़ी हरकत, यहाँ खड़ी हरकत कहाँ है? ढूंढते हैं ढूंढते हैं ढूंढते हैं, हाँ यहाँ पे कोई खड़ी हरकत हमें नज़र नहीं आ रही, लेकिन होती तो मैं आपको ज़रूर दिखाता। आयत के जो आगे का पार्ट है ना, उसमें तो खड़ी हरकत है, लेकिन हमारे सामने जो बोर्ड है इस पर कोई भी खड़ी हरकत नहीं है। तो खड़ी हरकत को जिस तरह उर्फ़ मद्दा को खींचते हैं तो उसी तरह खड़ी हरकत को भी खींचते हैं। تو حرکات کے ساتھ ساتھ حرف مدہ بھی آ رہا ہے اور کھڑی حرکات بھی آ رہی ہے. اب اس کو کھینچنا ہے پھر نہیں کھینچنا ہے. قرآن پاک جب آپ پڑھتے ہیں بیٹا اس میں بھی مشق چاہیے ہوتی ہے. آپ مشق کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ بھی جس طرح حمزہ بھائی نے پڑھا افلا ینظرون, تو ان کو پتا تھا ذا کو میں نے نہیں کھینچنا لیکن ذا کو کھینچنا ہے, نون کو میں نے نہیں کھینچنا, اسی طرح حمزہ اور فا کو بھی نہیں کھینچنا. ٹھیک ہے, یہ ایک بات. دوسرا میسج یہ ہے کہ اردو میں ہم بولتے ہیں نا, اردو میں ہم کچھ مجہول چیزیں بولتے ہیں, مجہول جیسے میرے رے, لیکن عربی کے اندر آپ نے مجہول اسٹائل نہیں اپنانا. جیسے یہ ہے ای, ای کو اے نہیں بولیں گے, اے اے بے اے بے لے, یہ غلط ہے, عربی ہے یہ. اور عربی کو اردو کی طرح نہیں پروناؤنس کرنا بلکہ عربی کو عربی کی طرح ہی پڑھنا ہے اور عربی کو معروف پڑھنا ہے, حرکات کو معروف پڑھنا ہے. تو یہ ہوگا ای بی لی, تو اے بے لے یہ غلط ہے اور ای بی لی یہ بالکل صحیح ہے. اسی طرح یہ بتائے یہ خولے قط ہے یا خلی قط ہے؟
خلی قط.
صحیح بتایا. اچھا یہ ایلس ہے یا ایلس ہے؟ ایلس کیا ہے؟ یہ غلط, یہ مجھول ہے. اسی طرح جب یہ پیش ہے نا, پیش کو کچھ بچے پڑھتے تھے نا, خولے خو خولے قط, اور صحیح کیا ہے؟ خلی قط. مائک میں بتا دیں صحیح کیا ہے؟
خلی قط.
صحیح کیا ہے؟
خلی قط.
خلی قط, خولی خو خو نہیں بلکہ خو. اس کا طریقہ کیا ہے کہ پیش آپ بالکل ٹھیک پڑھیں, اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کو پیش پڑھنا ہو آپ ہونٹوں کو پروپر گول کر لیں, خو کریں, خو دو, سب پڑھیں میرے ساتھ, دو
دو,
بو
بو,
نو
نو.
آپ جیسے ہونٹوں کو پورا گول کریں گے اب مجھول نہیں ہوگا بلکہ معروف ادا ہوگا. جس طرح عربی میں پڑھنا ہے اس طریقے سے آپ کا ادا ہوگا. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, آج اپنے اسپیشلی ایک چیز کے بارے میں سیکھا ہے, سمجھا ہے, اور وہ ہے حرکات. جی ہاں, حرکات کی بہت امپورٹنس ہے. قرآن پاک میں بہت ساری جگہ آپ کو کسی حرف کے اوپر زبر نظر آئے گا, کسی حرف کے نیچے زیر نظر آئے گا, اور کسی حرف کے اوپر پیش نظر آئے گا. اور آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ حرکات کو بالکل بھی نہیں کھینچتے ہیں اور مجھول بھی پھر کیسے پڑھتے ہیں؟
حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں.
معروف پڑھتے ہیں, مجھول نہیں بلکہ معروف پڑھتے ہیں. اب آپ کے لیے مجھول اور معروف لفظ مشکل ہو رہا تھا, اسی لیے میں نے آسان کر کے سمجھا دیا, مثالیں دے دی کہ اے نہیں ہے ای ہے, اور خو نہیں ہے بلکہ خو ہے. پیارے بچوں, اس کی آپ نے مشق کرنی ہے تو انشاءاللہ آپ بھی درست قرآن پاک پڑھنے والے بن جائیں گے. اسی کے ساتھ ہمارا سیگمنٹ ختم ہوتا ہے. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب اور اس کا نام ہے قرآنک ہسٹری.
قرآن میرا نور والی کتاب.
پیارے بچوں, سیگمنٹ ہے قرآنک ہسٹری. اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن پاک پر شروع میں زبر زیر پیش نہیں تھے. اسی طرح جو علامات وقف ہے نا, کہ جہاں پر رکنا ہے, کہاں پر نہیں رکنا, کہاں پر رک سکتے ہیں, کہاں بالکل نہیں رک سکتے, اسی طرح مد کی جو علامات ہیں وہ, بلکہ جو نقطے ہیں نا, نقطے سا کے تین نقطے, باقی نیچے ایک نقطہ, تا کے اوپر دو نقطے, اور جیم کے پیٹ میں ایک نقطہ, اور ہا میں کوئی بھی نقطہ
نہیں ہے.
یہ سب میں نے بتایا تھا کہ یہ قرآن پاک میں تھا ہی نہیں. پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ مختلف زمانوں میں نقطے لگائے گئے, کسی نے نقطے لگائے قرآن پاک میں, کسی نے وقف کی علامات لگائیں, کسی نے مد کی جو علامات ہیں وہ لگائیں, کسی نے جو ہے وہ اس پہ زبر زیر پیش لگائے, جیسے کہ ابھی ہم نے سیکھا بھی ہے. تو یہ کام قرآن پاک پہ کس نے کیا, پھر کب کب ہوتا رہا, کس طریقے سے اتنا قرآن پاک آسان ہو گیا اور ہمارے لیے قرآن پاک کو پڑھنا سیکھنا آسان ہو گیا, تو آج ہم الحمدللہ آسانی کے ساتھ قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں, سیکھ سکتے ہیں, سکھا سکتے ہیں. یہ تھی قرآن پاک کی وہاں تک کی ہسٹری. اب بچوں, آج میں نے مزید آپ کو کچھ باتیں بتانی ہیں. وہ بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ مشہور چار آسمانی کتابیں کون کون سی ہیں؟
توریت,
زبور. ہاں چلے, اب میرے ساتھ بتاتے ہیں. پہلی کون سی ہے؟
توریت,
زبور,
انجیل,
قرآن مجید. اور قرآن مجید کس پہ نازل ہوا؟ ہمارے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا. پیارے بچوں, قرآن پاک سے پہلے جو مشہور کتابیں میں نے ابھی بتائی ہیں آپ کو, آپ نے نام بھی بتائے ہیں ان کے, تو یہ جو کتابیں تھیں نا, ये स्पेसिफिक कुछ ख़ास कौमों के लिए थी, यानी तौरात आई वो एक ख़ास कौम के लिए थी और एक ख़ास टाइम के लिए थी, यानी इतने अरसे के लिए ये किताब है, इतने टाइम पीरियड के लिए ये किताब है। तो जब वो किताब जिन नबी अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई वो दुनिया से तशरीफ़ ले गए, तो हुआ ये कि इन किताबों को जो ज़िम्मा है हिफाजत का ज़िम्मा वो अल्लाह पाक ने नहीं लिया था। तो उनके जाने के बाद यानी अंबिया कराम के दुनिया से रुखसत होने के बाद ये किताबें महफूज नहीं रह सकी और दुनिया में सही सलामत बाकी नहीं रह सकी, बल्कि कुछ लोगों ने इन किताबों के अंदर चेंजिंग कर दी, अपने पास से किताबों के अंदर इन किताबों के अंदर कुछ का कुछ लिख दिया। लेकिन जो कुरान मजीद है जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, ये एक कौम के लिए नाजिल नहीं हुआ बल्कि सारी कायनात के लिए नाजिल हुआ है। जितने लोग हैं पूरी दुनिया में सबको इसी कुरान मजीद से हिदायत मिलनी है। इसी तरह कुरान पाक एक स्पेसिफ़िक टाइम पीरियड के लिए नहीं आया बल्कि क़यामत तक के लिए। अब कोई दूसरी किताब नहीं है, अब कौन सी किताब है? कुरान पाक है, अब ये किताब है। लिहाजा अल्लाह पाक ने इस किताब की हिफाजत का ज़िम्मा लिया कि अब इस किताब की हिफाजत कौन करेगा? अल्लाह तबारक व तआला करेगा। अल्लाह पाक कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है इसी हवाले से, तर्जमा कंजुल इरफान है, बेशक हमने इस कुरान को नाजिल किया है और बेशक हम खुद इसकी हिफाजत करने वाले हैं। कह दीजिए सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी बात है कि कुरान पाक की हिफाजत कौन कर रहा है? हमारा खुदा, हमारा खालिक, हमारा मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान पाक की हिफाजत कर रहा है। तो अल्लाह पाक ने इस कुरान पाक की ऐसी हिफाजत की कि 1400 साल गुजर गए, आज तक कुरान पाक में कोई भी तब्दीली नहीं कर सका। पता है जो गैर मुस्लिम्स हैं ना, उन्होंने कोशिशें की कि कुरान पाक में चेंजिंग कर दें, अपने पास से कोई सूरत बना लें, कोई आयत बना लें, लेकिन कुरान पाक की तो हिफाजत अल्लाह पाक कर रहा है, तो इंसान कैसे कोई चेंजिंग कर सकता है। उन्होंने बहुत कोशिशें की लेकिन कोई भी कुरान पाक पे चेंजिंग नहीं कर सके। अल्लाह पाक ने इसकी हिफाजत ऐसी की कि आज बच्चे के सीने में कुरान पाक को अल्लाह पाक ने महफूज फरमा दिया। और छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चों ने भी पूरा का पूरा कुरान पाक याद किया हुआ है। हज़ारों लाखों लोगों के सीनों के अंदर कुरान पाक महफूज है, तो चेंजिंग कैसे हो सकती है? क्योंकि इसकी हिफाजत तो अल्लाह पाक खुद कर रहा है। तो प्यारे बच्चों, इतनी प्यारी खूबसूरत किताब जिसकी हिफाजत अल्लाह पाक खुद कर रहा है, बच्चे के सीने में ऐसी प्यारी किताब मौजूद है, हमें ऐसी प्यारी किताब की तिलावत करते रहना चाहिए और उसको सीखते रहना चाहिए, उसकी तालीमात को आम करते रहना चाहिए। और आगे कुरान हिस्ट्री के मुतालिक मज़ीद क्या बातें हैं वो मैं बताऊँगा आपको इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के इसी सेगमेंट में। इसके लिए आप हमारे अगले प्रोग्राम के इसी सेगमेंट का इंतज़ार कीजिए और तमाम प्रोग्राम देखिए। जब तक हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब और उसका नाम है हमारा कुरान।
कुरान मेरा नूर वाली किताब।
प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट है हमारा कुरान और इस सेगमेंट में हम कुरान पाक में मौजूद चीजों के बारे में आपको बताएंगे कि कुरान पाक में किन किन चीजों का जिक्र आया है और फिर इन चीजों के बारे में आपसे इंफॉर्मेटिव बातें भी शेयर करेंगे। तो आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम जिस चीज का जिक्र करने जा रहे हैं वो जानवरों में से एक बहुत ही प्यारा जानवर है और वो है बकरी। बकरी का जिक्र कुरान पाक में किस तरह आया है, आइए इस बारे में सुनते हैं। तर्जुमा ए कंजुल इरफान अर्ज की, ये मेरा असा है, मैं इस पर तकिया लगाता हूँ और इसे अपनी बकरियों पर पत्ते झाड़ता हूँ और मेरी इसमें और भी कई जरूरतें हैं। प्यारे बच्चों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक असा यानी लाठी थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि मैं उस असा पर टेक लगाता हूँ और अपनी बकरियों के लिए इस असा से पत्ते भी झाड़ लेता हूँ। तो प्यारे बच्चों, जिस आयत का तर्जमा हमने सुना इसमें बकरी का जिक्र आया है और किस अंदाज से आया है आपने सुन लिया। प्यारे बच्चों, बकरी उन जानवरों में से है जिसे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती जानवर फरमाया। एक हदीस पाक में है कि अल्लाह पाक के प्यारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बकरी की इज्जत करो और इससे मट्टी झाड़ो, क्योंकि वो जन्नती जानवर है। बकरी एक ऐसा जानवर है जिसे इंसान कई सालों से पालते आ रहे हैं। बकरी से इंसान फ्रेश मिल्क भी हासिल करता है। इसके अलावा इससे हमें हेल्दी मीट भी हासिल होता है। और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरी के दस्त यानी हैंड और शाने का गोश्त पसंद फरमाते थे। बकरियों से प्यार और मोहब्बत करनी चाहिए क्योंकि ये जन्नती जानवर भी हैं। और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बकरियों से मोहब्बत और नरमी फरमाते थे। और इस तरह के हमें वाकयात भी मिलते हैं। आइए एक प्यारा सा वाकया सुनते हैं। एक दिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सीधे हाथ से तर खजूरें खा रहे थे और दूसरे हाथ में इसकी गुठलियां रख रहे थे। इसी दौरान वहां से एक बकरी गुजरी तो अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरफ गुठली का इशारा फरमाया तो उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लेफ्ट हैंड से गुठलियां खाना शुरू कर दी, जबकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सीधे हाथ मुबारक से खजूरें तनावल फरमा रहे थे यानी खा रहे थे। और जब आप खाकर फारिग हुए तो वो बकरी भी वहां से चली गई। प्यारे बच्चों, आज हमने बकरी के बारे में सुना, इसका जिक्र कुरान पाक में किस तरह आया है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ।
प्यारे बच्चों, अभी आपने बकरी के बारे में सुना कि बकरी कितना प्यारा जानवर है और इसका जिक्र कुरान मजीद के अंदर मौजूद है और इसके मुतालिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस पे से मिट्टी साफ किया करो। तो कितना खूबसूरत जानवर है, जन्नती जानवर है। तो हमें स्पेशली बकरी और इसके अलावा दीगर जितने भी जानवर हैं, बकरी है और बैल है, ऊँट है, किसी भी जानवर को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये आपने सेगमेंट देखा था। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब और ये है एक प्यारी सी ज़बरदस्त एक्टिविटी और इसका नाम है जवाब ढूंढें। प्यारे बच्चों, ये इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है और इसके अंदर आपको मुकाबले में कुछ मालूमात फराहम करेंगे। हमारे साथ टीम ए है और यहाँ पर टीम बी है। ए और बी सिलेक्शन करते हैं। टीम ए से मुकाबले के लिए कौन आ रहा है? अच्छा, आप आ जाइए, वहाँ चले जाइए बोर्ड के पास। और टीम बी से मुकाबले के लिए कौन आ रहा है? चले आप आ जाइए, आप वहाँ बोर्ड के पास चले जाए। अब मैं बताता हूँ आपने करना क्या है। देखिए, मेरे पास कुछ सवाल मौजूद हैं, वो हैं 6 सवाल। और बोर्ड पर देखें कितनी गिनती लगी हुई है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। आपके सामने बास्केट नज़र आ रही है, वो देखें रेड कलर की बास्केट। तो ये जो बास्केट है इसके अंदर कलरफुल स्ट्रिप्स रखी हुई हैं। मैं सवाल करूँगा, इसका जवाब आपने लिखना नहीं है, आपने वहाँ ढूंढना है बस, उसके अंदर जवाब इसका लिखा हुआ होगा। तो आपने वो जवाब उठाना है और बोर्ड पर थंब पिन कर देना है। जो बच्चा जितने ज़्यादा सही जवाब तलाश कर लेगा वो भी जीत जाएगा और उसकी टीम भी
जीत जाएगी।
फिर तैयार है मुकाबले के लिए? तैयार है? चले भाई, वो टीम बी भी तैयार है। सवाल नंबर 1, कुरान पाक की एक सूरत का नाम सूरह नसर है, नसर का माना बताइए। आप जो बास्केट रखी हुई है उसमें तलाश करें, नसर का माना उसमें लिखा हुआ है। टीम बी, आप भी तलाश करें, देखें नसर का माना उसमें लिखा हुआ है। क्या है नसर का माना? टीम ए ने भी जवाब ढूंढ लिया है, टीम बी ने भी जवाब ढूंढ लिया है। अगला सवाल, 30वें पारे की किस सूरत में किरामन कातिबीन फरिश्तों का जिक्र आया है? किरामन कातिबीन का जिक्र 30वें पारे की किस सूरत में आया है? टीम बी में से कोई पहुंचा है क्या? आप पहुंच गए क्या? आपको पता चल गया जवाब क्या? नहीं पता लगा, मुश्किल है। माशाल्लाह, टीम ए और टीम बी दोनों का जवाब मिल गया है। बढ़ते अगले सवाल की जानिब। कुरान पाक में किस वाकया को अल्लाह पाक ने अपनी अजीब निशानी फरमाया है? कुरान पाक में किस वाकये को अल्लाह पाक ने अपनी अजीब निशानी फरमाया है? अब ढूंढने किस वाकये को फरमाया है, वो ढूंढने से मिलेगा। आप सवाल सुनते रहा करें और फौरन ढूंढना शुरू कर दिया करें। अस्हाबे कहफ को फरमाया है, अस्हाबे कहफ का वाकया है या अस्हाबे फील? अस्हाबे कहफ या अस्हाबे फील? टीम बी, अभी तक तलाश जारी है। चले, टीम बी को भी मिल गया है। अगला सवाल, सूरह बकरा किस पारे में ख़त्म होती है? यह है सवाल नंबर 4। सूरह बकरा किस पारे में ख़त्म होती है? ये तो फौरन ढूंढ लिया माशाल्लाह, लगता है बहुत आसान सवाल है। सूरह बकरा किस पारे में ख़त्म होती है, दूसरे में या तीसरे में? सवाल नंबर 4 है ये। हाँ, जो सवाल नंबर हो वहीं लगाना है वरना गलती हो जाएगी ये भी। और पांचवा सवाल है कुरान पाक के मुताबिक, अगर कुरान पाक पहाड़ों पर नाजिल होता तो पहाड़ क्या हो जाते, मजबूत या रेजा रेजा? सही लफ्ज है रीजा रीजा। टीम बी को नहीं मिल रहा है, मजबूत हो जाते या रेजा रेजा हो जाते? आप ढूंढ रहे मिला है? ओ आपने तो पहले लगा दिया, अब क्या कह रहे हैं, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो टाइम भी बिल्कुल ख़त्म है। चले बहरहाल छठे सवाल की जानिब बढ़ते हैं। छठा सवाल है, किस सूरत में अल्लाह पाक ने अपनी नेमतों का बार बार जिक्र फरमाया है? और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? अल्लाह अकबर, बहुत मशहूर सूरत है, सूरह रहमान है या सूरह यासीन है? चले दोनों ने जवाब ढूंढ लिया है और दोनों लगा रहे हैं। मैं जाता हूँ सबसे पहले टीम ए की जानिब, हसबे मामूल हसबे आदत। टीम ए, पहले सवाल का जवाब है मदद करना, ठीक है। दूसरे सवाल का जवाब है सूरह इन्फितार, ठीक है। तीसरे सवाल का जवाब अस्हाबे कहफ, ठीक। चौथे सवाल का जवाब तीसरा पारा, ठीक। और पांचवे सवाल का जवाब रेजा रेजा, ठीक। छठे सवाल का जवाब सूरह रहमान, ठीक। माशाल्लाह टीम ए ने 6 के 6 सवालों के दुरुस्त जवाब दे दिए हैं। अब टीम बी ने क्या किया है? टीम बी को पता चल गया कि मैंने क्या किया है। टीम बी के पहले सवाल का जवाब सही गलत,
गलत।
और दूसरे सवाल का जवाब
सही,
और तीसरे
सही,
चौथे
सही,
लेकिन पांचवा भी सही होता अगर यहाँ पे ये नहीं होता। चले और छठे सवाल का जवाब ये भी सही, तो इसकी वजह से कितने सवाल के जवाब गलत हो गए?
दो सवालों
के जवाब गलत हो गए। आप दोनों अपनी जगह पर तशरीफ रखें। इस तरीके से टीम ए जीत गई या टीम बी?
टीम ए।
प्यारे बच्चों मुकाबला जीत चुकी है, आगे बढ़ चुकी है। आप भी अपने घर में इस तरह मुकाबला कर सकते हैं, बहुत कुछ सीख और सिखा सकते हैं। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त होता है ख़त्म। मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम में, अपना ख्याल रखिएगा। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल किड्स मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलैल हबीब
सल्लल्लाहु
तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
नूर वाली नूर वाली नूर वाली किताब कुरान, मेरा नूर वाली किताब।